लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। नबियों के अभाव में जनता आत्म संयम खो बैठती है, किंतु संहिता का पालन करने वाले को सुख शांति मिलेगी। शब्दों द्वारा नौकर का सुधार असंभव है, क्योंकि समझने पर भी वह ध्यान नहीं देगा। जो व्यक्ति सोच विचार किए बिना बोलता, उसकी अपेक्षा मूर्ख के सुधार की आशा कहीं अधिक है। जो बचपन से अपने नौकर को सिर चढ़ाता, वह अंत में उसे निकम्मा बना देगा। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 29वें अध्याय के 18 से लेकर 21 तक के पदों में निहित शब्द। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के विगत प्रसारण में हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। इन पदों में संहिता के पालन पर, यानी कि प्रभु ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों के अनुपालन का संदेश दिया गया है। इससे पूर्व के पदों में लेखक ने माता पिताओं, अभिभावकों और परिवार के वयस्कों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बच्चों की शिक्षा, उनकी उचित परवरिश की ओर ध्यान आकर्षित कराया था। लेखक कहता है कि जो पिता अपने पुत्र को अनुशासन में रखता है, वह उसमें शांति और आनंद का स्रोत प्रवाहित होते देखेगा। इस तरह सूक्ति ग्रंथ का लेखक अनुशासन की जरूरत, माता पिता का आदर और अच्छे शासन की आवश्यकता पर बल देता है। पुत्र यदि अनुशासन में रहेगा तो वह माता पिता की शांति और उनके आनंद का कारण बनेगा। वैसे ही यदि शासक और न्यायाधीश भले होंगे और अपनी प्रजा एवं लोगों की बात सोचेंगे, सत्य का पक्ष लेंगे और झूठ का बहिष्कार करेंगे, तो संपूर्ण राष्ट्र समृद्धि, खुशहाली और शांति का आनंद ले सकेगा। 18 से लेकर 21 तक के पदों में लेखक नबियों को समाज की भलाई के लिए अनिवार्य निरूपित करता है, क्योंकि नबियों के अभाव में जनता आत्म संयम खो बैठती है। श्रोताओं, जब तक लोगों को कोई बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आती, तब तक वे उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि जब तक नबी, सलाहकार, अध्यापक या अभिभावक हमारे समक्ष किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे उस बात को समझ सकते हैं? और जब बात को समझ ही नहीं पाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं। यहाँ रहस्योद्घाटन से अर्थ है प्रकाशना, ईश्वर की प्रकाशना, ईश नियमों की प्रकाशना, ईश वचन की प्रकाशना। ईश्वर का वचन जब अनुपलब्ध या अस्वीकार कर लिया जाता है, तो लोग संयम खो बैठते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास अपनी भावनाओं या वर्तमान विचारों से बड़ा कोई मानक नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति व्यवस्था का पालन करता है, जो ईश नियमों का अनुपालन करता है, वह सुख और संतुष्टि प्राप्त करता है। इस अर्थ में बाइबल धर्म ग्रंथ हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा हमें दी गई एक मार्गदर्शिका है, जो हमें ईश नियमों से अवगत कराता और विवेकपूर्ण एवं प्रज्ञावान जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। फिर लेखक शब्दों से अधिक आचरण के महत्व को प्रकाशित करता है। शब्दों द्वारा नौकर तो क्या, किसी का भी सुधार असंभव है। शब्दों को लोग सुन तो लेते हैं, किंतु उन पर अमल नहीं कर पाते। क्योंकि उन्होंने शब्दों से परामर्श देने वाले के कार्यों को नहीं देखा होता है। अस्तु लेखक कहता है कि केवल शब्दों से लोगों को सीख मत दो, बल्कि अपने कर्मों द्वारा उन्हें दर्शाओ कि क्या भला है और क्या बुरा। तभी आप सुधार की आशा कर सकेंगे, तभी आप बुराई को भलाई में परिवर्तित करने में सक्षम बन सकेंगे।
प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहारा।
और अब आइए 29वें अध्याय के 22वें और 23वें पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं: चिड़चिड़ा व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और क्रोधी बहुत से पाप करता है। मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता, किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। श्रोताओ, इन पदों में क्रोध आवेश पूर्ण उग्र स्वभाव से निकलने वाली बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। क्रोधी व्यक्ति झगड़े को बढ़ावा देता, परिवार और पड़ोस में उपद्रव को प्रश्रय देता, आग उगलता और यहाँ तक कि उन लोगों को भी अलग कर देता है जो उसके साथ शांतिपूर्वक ढंग से जीवन यापन करना चाहते हैं। वस्तुतः क्रोधी व्यक्ति अपने मन और भावनाओं से बंधा होता है, वह अपराधों में लिप्त हो जाता है, क्योंकि अनुचित क्रोध एक पाप है जो कई पापों का कारण है। यह न केवल लोगों को ईश्वर का नाम लेने से रोकता है, बल्कि यह उन्हें शपथ लेने, शाप देने और ईश्वर के नाम का अपमान करने का अवसर देता है। फिर लेखक कहता है कि मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता, किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। श्रोताओ, यह बात येसु मसीह द्वारा एक से अधिक बार कही गई बातों से सहमत है। जो लोग खुद को ऊंचा उठाते हैं वे अपमानित होंगे। जो लोग खुद को अपने पद से ऊपर उठाकर ऊंचा दिखने, बड़ी बड़ी बातें करने, अच्छा दिखने और खुद की तारीफ करने से सम्मान पाने की सोचते हैं, वे इसके विपरीत खुद को तिरस्कार के लिए उजागर करेंगे। वे अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे और उन्हें नीचा दिखाने के लिए ईश्वर को अपमानित करेंगे। इसके विपरीत जो लोग खुद को नम्र बनाते हैं वे ऊंचे उठाए जाएंगे और अपनी गरिमा में स्थापित होंगे। सम्मान नम्र लोगों को बनाए रखेगा। उनकी विनम्रता उनका सम्मान है और यह उन्हें वास्तव में सुरक्षित रूप से महान बनाएगा और उन्हें सभी बुद्धिमान एवं अच्छे लोगों के सम्मान के लिए अनुशंसित करेगा। आगे सूक्ति ग्रंथ के 29वें अध्याय के 24 से लेकर 27 तक के पदों में, यानी कि इस अध्याय के अंतिम पदों में, एक बार फिर लेखक ईश्वर पर भरोसा और श्रद्धा का आह्वान करता है। कहता है, चोर का सहायक अपने से बैर करता, वह शपथ खिलाने पर भी चुप रहता है। जो मनुष्यों से डरता वह अपने लिए जाल बिछाता है, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता वह सुरक्षित है। बहुत लोग शासक के कृपा पात्र बनना चाहते हैं, किंतु प्रभु मनुष्य को न्याय दिलाता है। कुकर्मी से धर्मियों को घृणा है, निष्कपट व्यक्ति से दुष्टों को घृणा है। लेखक कहता है कि चोर का सहायक खुद अपने से बैर करता है, यानी कि उसमें बहुत अधिक अपराध का बोध होता है, क्योंकि वह लूटने वालों और ठगने वालों का भागीदार बनता है। जो चोरी का माल प्राप्त करता है, भले ही उसने चोरी ना की हो, लेकिन वह भी चोर के ही समान बुरा है और पाप करने में उसके साथ, यानी कि चोर के साथ शामिल होता है। लेखक कहता है कि ऐसे लोग खुद अपने से बैर करते और आत्माओं से घृणा करते हैं। आगे लेखक हमें सावधान करता है और कहता है कि मनुष्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य की शक्ति से डरने वाला खुद के लिए जाल बिछा लेता है। और फिर यदि हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो हम किसी से क्यों कर डरें? संत लुकस रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु येसु कहते हैं, उससे डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है, अर्थात मनुष्य को केवल ईश्वर से भय खाना चाहिए, केवल ईश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए, इसी प्रकार वह सुरक्षित रह सकेगा। जैसा कि स्तोत्र ग्रंथ के 118वें भजन के 6वें पद में भजनकार कहता है, प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे कोई भय नहीं।
प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहायक है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहायक है, दुर्ग बनाओ शरणागत में, प्रभु ही मेरा रक्षक है, फिर मुझको किस
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो चुका है। बुधवार शाम को 133 कार्डिनल निर्वाचकों ने समारोह जुलूस के साथ सिस्टीन चैपल में प्रवेश किया तथा 267वें पोप का चुनाव करने के लिए कॉन्क्लेव की शुरुआत की। माइकलांजेलो के सुंदर भित्ति चित्रों के सामने 2025 के कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले 133 कार्डिनलों ने सिस्टीन चैपल में प्रवेश किया और पोप के चुनाव की प्राचीन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हुई। रोम समय अनुसार 3:45 पर कार्डिनल निर्वाचक पॉलिन चैपल में एकत्रित हुए और वरीयता के विपरीत क्रम में संतों की स्तुति विनती का जाप करते हुए सिस्टीन चैपल में आगे बढ़े और फिर वेनी क्रिएटोर स्पिरिटुस भजन गाया गया, जिसमें पौत्र आत्मा को अपने ऊपर उतरने का आह्वान किया गया। जुलूस का नेतृत्व एक क्रूस द्वारा किया गया, जिसके बाद गायक मंडली और फिर समारोह के मास्टर के सहायक पुरोहित थे। उनके पीछे कॉन्क्लेव के सचिव और फिर कार्डिनल आए, जिन्हें चैपल को सील करने के बाद शुरुआती चिंतन प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। कार्डिनल पंक्ति में पीछे पीछे आए और अंत में समारोह के मास्टर थे। कार्डिनल निर्वाचकों के बीच परंपरा के क्रम तय हैं। पहले कार्डिनल डीकन, फिर पुरोहित और उसके बाद धर्माध्यक्ष। सिस्टीन चैपल के अंदर जाने के बाद प्रत्येक कार्डिनल बारी बारी से सुसमाचार पर हाथ रखकर गोपनीयता की शपथ ली, जो उन्हें कॉन्क्लेव के दौरान और बाद में बांधती है। प्रत्येक ने शपथ लेते हुए कहा, इसलिए ईश्वर और यह पौत्र सुसमाचार मेरी मदद करें, जिससे मैं अपने हाथ से स्पर्श कर रहा हूं। जब एक्स्ट्रा ओमनेस सभी बाहर निकले की घोषणा हुई तो सभी गैर कर्मचारी बाहर निकल गए और सिस्टीन चैपल का दरवाजा बंद हो गया। तब कार्डिनल रनियरो कंतला मेसा ने विचार विमर्श शुरू करने से पहले कार्डिनलों को प्रार्थना और आत्म परख के लिए आमंत्रित करते हुए एक चिंतन प्रस्तुत किया। सिस्टीन चैपल कॉन्क्लेव चाबी के साथ बंद हो चुका है और कार्डिनल संत पेत्रुस के 267वें उत्तराधिकारी का चुनाव करने का पौत्र कार्य शुरू कर चुके हैं। नए पोप का चुनाव करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, जिसमें कम से कम 89 वोटों की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन मतदान के 4 दौर होंगे। काला धुआं अनिर्णित मतदान का संकेत होगा, जबकि घंटों की आवाज के साथ सफेद धुआं नए पोप के आगमन की घोषणा करेगा। यह कॉन्क्लेव इतिहास में सबसे विविधतापूर्ण कॉन्क्लेव में से एक है, जिसमें 70 देशों के मतदाता शामिल हैं, जो कलीसिया के भीतर प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने के पोप फ्रांसिस के प्रयासों का प्रतिबिंब है। सिस्टीन चैपल की दीवारों के भीतर चिंतन के समय गोपनीयता की शपथ का पूर्ण पालन किया जाता है, यहाँ तक कि इसमें शामिल लोग धर्मी और धर्म संघी कर्मचारी जैसे चिकित्सा कर्मचारी, विविध समारोहों के सहायक और अन्य घरेलू कर्मचारियों ने भी लाते सेंटेंस बहिष्कार की सजा के तहत मौन रखने की शपथ ली है। वैटिकन ने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए हैं, निगरानी अभियान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध यह सुनिश्चित करता है कि यह पौत्र प्रक्रिया बाहरी दुनिया के शोर से सुरक्षित रहे। वास्तव में कोई नहीं जानता कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध चैपल की दीवारों के भीतर क्या हो रहा है, लेकिन जब यह हो रहा होता है तो विश्व इसकी छोटी चिमनी पर नजर रख रहा होता है, जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चिमनी है। बुधवार शाम 9 बजे सिस्टीन चैपल के ऊपर लगे चिमनी से काला धुआं निकला, जो इस बात का संकेत था कि कॉन्क्लेव में पहला मतदान हो चुका है और पोप के चुनाव के बिना ही यह संपन्न हो गया है। संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में करीब 45,000 लोग नए पोप की घोषणा का इंतजार करने के लिए जमा हुए थे, जिसकी घोषणा शाम 7 बजे के बाद होने की उम्मीद थी, लेकिन लोगों को 9 बजे तक इंतजार करना पड़ा। प्रांगण में मौजूद लोगों में तंजानिया के डेकोन निकोल्स इनकोरोंग को भी शामिल थे। वैटिकन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ हमारी भूमिका प्रार्थना करना और अन्य क्रिस्तों और अन्य कैथलिकों के साथ मिलकर पौत्र आत्मा का आह्वान करना है, ताकि वे पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन करें। डीकन एनकोरोंको ने जोर देकर कहा, नया पोप चाहे कहीं से भी आए, चाहे वह अफ्रीकी हो, एशियाई हो या अमेरिका से हो, हमें एक पौत्र पोप की जरूरत है। हमें एक ऐसे पोप की जरूरत है जो कलीसिया का मार्गदर्शन करें और कलीसिया का चरवाहा हो। 267वें पोप के चुनाव के लिए आयोजित कॉन्क्लेव के दूसरे मतदान के बाद भी पोप का चुनाव नहीं हो सका। गुरुवार दोपहर लगभग 11:50 पर सिस्टीन चैपल के ऊपर चिमनी से काला धुआं दिखाई दिया, जिससे यह संकेत मिला कि कॉन्क्लेव के दूसरे दिन का दूसरा मतदान और कुल मिलाकर तीसरा मतदान अनिर्णायक रहा। जब कार्डिनल दोपहर के भोजन के लिए अवकाश पर जा रहे थे तो संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में मौजूद लोग उत्सुकता से चिमनी की ओर देख रहे थे। नए पोप की घोषणा की प्रतीक्षा में लगभग 15,000 लोग संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित थे। प्रांगण में मौजूद लोगों में भारत से रोम में हनीमून मनाने आए एक नवविवाहित जोड़ा सारा और कैमरन भी शामिल था। उन्होंने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि उन्हें गुरुवार को पोप फ्रांसिस के साथ पौत्र मिस्सा में शामिल होना था। हालांकि उन्हें दुख है कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वे जानते हैं कि यह जीवन में एक ही बार मिलने वाला अवसर है। सारा ने आशा व्यक्त की कि नए पोप इस अशांत विश्व में तर्क की आवाज बनेंगे। सिस्टीन चैपल में उन्होंने मतदान करने से पहले मध्याह्न प्रार्थना का पाठ किया। दोपहर का भोजन संत मार्था में होगा और अगले मतदान के लिए वे 4:15 प्रेरितिकावा से प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात 4:30 सिस्टीन चैपल में वापस लौटेंगे, जहां 2 और मतदान होंगे। पोम्पे के मातामरियम तीर्थस्थल पर कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जवानी बत्तीस्ता रे ने बृहस्पतिवार 8 मई को समारोही ख्रिस्ताग अर्पित किया। कार्डिनल ने कहा कि जिन्हें हम हमारी माता और हमारी आशा के रूप में पुकारते हैं, वे हमें अपनी सुरक्षा से वंचित नहीं करेंगी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।